गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अर्जुन को समझा आइए निकट भूमि अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं। उन्होंने पहले ये बताया शरीर मैं नहीं, शरीर पूर्व जन्मों के कर्म के फल से हमें मिला है, ये वस्त्र के समान है, इसलिए इसे नष्ट होने से या पुनः जन्म होने से इसका जीवात्मा के साथ में कोई अधिक संपर्क नहीं। शरीर के मर जाने से ही आत्मा नहीं मर जाती, शरीर के दुखी होने से ही आत्मा दुखी नहीं होती। यह भगवान का अंश है, सनातन है। भगवान की सेवा भूलने से इसकी ऐसी दुर्गति हुई। आत्मा अगर अमर शाश्वत है, नैनम चिदम शास्त्रा शास्त्रों के द्वारा इसको मारा नहीं जा सकता, पानी से भिजा नहीं सकता, हवाई से सुखा नहीं सकते, इसलिए इसको शाश्वत है। तुम्हारा भी हजारों बार जन्म हुआ, मेरा भी जन्म हुआ, हमें याद है, तुम्हें याद नहीं। मैं माया के बस में जन्म नहीं लेता, जीव माया के बस में होकर के जन्म लेते हैं। इसलिए प्रथम स्थिति में हमें अपना कर्तव्य जो हमारे लिए है शास्त्रों ने जो निर्धारित किया हमें करना चाहिए, और वैष्णव के संग में हम सब रहते रहते अपने सिद्धांत को जान करते हैं, तत्व माया तत्व भगवत तत्व एकांत की शुद्धा भक्ति करते। उन्होंने योग का भी उल्लेख किया, हठ योग का उल्लेख किया, तप योग का उल्लेख किया, ज्ञान योग का उल्लेख किया, कर्म योग का उल्लेख किया। कर्म और कर्म योग एक नहीं है, जो कर्म भगवान से योग करते हैं उन्हें कर्म योग कहते हैं, ज्ञान और भगवान का जिससे योग होता है वो ज्ञान योग है। भगवान का ज्ञान के जरिए, ज्ञान के माध्यम से भगवान के अव्यक्त रूप निराकार निर्विशेष निशक्ति अपने जीव तत्व का बोध होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान माने अपने आत्मा को ज्ञान को साधारण रूप से ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसी को अक्षर कहते हैं, किंतु अक्षर से भी श्रेष्ठ है पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम कृष्ण है, अक्षर कृष्ण के लिए बोधित होने पर भी, कृष्ण के लिए समझा जाने पर भी ये आत्मा के लिए है। इसलिए अक्षर ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये सत्यों के लिए है, किंतु परमात्मा ज्ञान या पुरुषोत्तम ज्ञान कृष्ण तत्व का ज्ञान ये सर्वोत्तम ज्ञान है। तो पहले लोग अपने सब कर्मों को करते हुए उसे चित्त शुद्ध होने के बाद में वैष्णव के संग में भक्ति करके भगवान को जो जानते हैं, एक तरीका ये, और एक है कि प्रारंभ से ही भक्तों का संग करके हम भक्ति करते हैं। कृष्ण को, कृष्ण के श्याम सुंदर रूप को, बंसीधारी रूप को भगवान मानकर और उनकी कथाओं का सुनते हैं, उनका नाम जप करते हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है ज्ञान योग कर्म योग सब योग से, इसको पहले बतलाया। इसके बाद में सबसे बारहवां अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया है, दो प्रकार अभी तक आपने जो कुछ बतलाया हमने इसे ये निष्कर्ष निकाला है, निष्कर्ष ये हमने निकाला कि दो प्रकार की उपासनाएं हमारे भारतवर्ष में चलती है। भगवान को निराकार निरंजन मानकर, अपने को ब्रह्म मानकर, उसी को मानकर के एक उपाय, और एक होती है भगवान का अपराकृत रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, उनके प्रति उनका नाम स्मरण करना, उनके नामों का कीर्तन करना, उनके रूपों का चिंतन करना, उनके लीलाओं को श्रवण करना, कीर्तन करना, ये एक भक्ति है। इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है आप स्पष्ट करके हमें बतलाइए। आपने अभी तक तो कितने प्रकार की बातों को बतलाया, अब स्पष्ट करके बतलाइए। उसी में कृष्ण कह रहे हैं, जो अव्यक्त अनादि अरूप जिसको कहते हैं ब्रह्म कहते हैं, वो भी हमारा ही अंश है, वो हमसे कुछ अलग नहीं है, उसकी भी प्रतिष्ठा मैं ही हूं, मैं न रहूं तो वो भी नहीं रहे, हमारी छाया की भांति है, यदि काया नहीं रहेगी तो छाया नहीं रहेगा, इसलिए उस ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा मैं ही हूं, वो हमसे अलग कुछ नहीं है, किंतु क्लेशो अधिकतर स्तेषां, उसमें क्लेश है, कोई रूप नहीं है, कोई लीला नहीं है, इसलिए उसका ध्यान चिंतन इत्यादि होना बड़ा भारी कठिन है, तो वो उपासना काल में भी और स्थिति दोनों जगह में भी वो दुखपूर्ण है। यदि हम साधन करते हैं क्लेश करके, निराकार उसमें चित्त लगेगा कहां से, और कठिन मार्ग है, और उसका जो फल है उसमें भी आनंद नहीं है, कल्पना करते हैं कि हम शांति से है उसमें मिल गए, इसलिए वो पत्थर के समान है, पत्थर को जैसे शांति है उसको कोई कष्ट नहीं है, उसे टुकड़े टुकड़े कर डालो उसको कष्ट नहीं होगा, ये तो शांति है, किंतु भक्त शांति नहीं, उनका प्रेम चाहता है, आनंद चाहता है, वो उनकी सेवा में है, इसलिए पहले प्रकार के जो बतलाया वो लोग केवल उपासना के समय में और अंत में भी क्लेश ही प्राप्त होते हैं, किंतु जेतु सर्वाणि कर्माणि मैषण्यस्य, उसके जितने भी कर्म हैं भगवान के लिए न्यास करके, अर्थात भगवान से जो भगवान के लिए ही करता है। अर्जुन ने युद्ध किसके लिए किया, कृष्ण के लिए किया, गोपियां या वहां के ब्रजवासी लोग कोई भी कार्य करते हैं किस लिए, कृष्ण के लिए करते हैं, इसलिए सन्यास माने सम्यक रूप से न्यस्त करके जोड़ करके कृष्ण के लिए ही सब काम करते हैं। ऐसा जो करते हैं मत परा हमारे पारायण हैं, सब समय मेरा चिंतन करते हैं, अनन्य एव दूसरों किसी की नहीं और किसी दूसरे लाभ के लिए नहीं, कृष्ण मेरे प्रीति के लिए ही अपने सब कर्मों को अपनी आत्मा को भी हमारे में लगा देते हैं और मेरा सब समय चिंतन करते हैं, वे श्रेष्ठ है, तेषां अहं सुमद्धर्ता, मैं उसका उद्धार करने वाला मैं हूं संसार सागर से, और ये हमारे प्रिय हैं। इसमें अनुवाद में लिखा है, जो अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कर अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। स्वामी जी ने ऐसा नहीं लिखा, अनुवाद में नहीं लिखा, अर्पित करना भक्ति नहीं है, ये कर्म मिश्रा है, अपने कर्मों को करके और भगवान को अर्पित करना ये कर्म है, और मैं भगवान का सेवक हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं भगवान की प्रीति के लिए कर रहा हूं, ये भक्ति आ रहा है समझ में। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, और फिर वो भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। ये हो गया कर्म मिश्रा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, आरोप करते हैं। और उसमें मैं आपका सेवक हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। अर्पित करना मैंने, जैसे किसी ने अपने बाप की संपत्ति से बाप के लिए कुछ खरीद करके ले आया, कपड़े लत्ते मिठाई, एक कंबल एक धोती ले आया, और कहा जब प्रभु आपके लिए मैं अर्पण कर रहा हूँ। ये उचित नहीं, उनकी चीज उनका क्या अर्पण करेगा, वो तो उनकी सेवा के लिए रखो, वो सेवा करना है। दान पिताजी को क्या तू दान करेगा, ये अर्पण करना मैंने दान करना, तो ये दान करना अर्पण करना भक्ति नहीं है, बहुत तुच्छ चीज है ये, किंतु साधारण लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है अपने कर्मों को अर्पण करना। किंतु अनन्य भाव से वो नहीं होगा। अर्पण किस लिए करता है, प्रभु प्रसन्न होकर के हमको कुछ दें, क्या दें, कर्मों का फल जो है वो दें या मुक्ति दें, इसलिए ये गलत चीज है, ये भक्ति नहीं हुई। इसलिए भक्त लोग श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यक्षात्म निवेदनं इति पुण्य सार्पिता, अपने को ही पहले अर्पण कर देते हैं भगवान को, जो मैं तेरा हूँ ऐसा भाव लेकर के जो भगवान की भक्ति करते हैं वो अनन्य है और उन पहले वाले से ये श्रेष्ठ हैं। न्यस्त है ना, संन्यस्त, न्यस्त माने क्या, न्यास करना, न्यास करना माने क्या, एक तो होता है त्याग करना और एक होता है ग्रहण करना, सम्यक रूप से न्यास किया है, भगवान के साथ में जुड़ दिया, मैं आपका सेवक हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ आपकी प्रीति के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो एकांतिक भक्ति नहीं होगी, है ना। इसलिए आगे वो अनन्य एव योगेन ध्यायन्त उपासते तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार, और इसको आगे कह रहे हैं, मैव मन अध्यस्व, अपने मन को नष्ट करके, अध्यस्व माने क्या, मन मना भव, जिसके लिए मैं उदाहरण देता हूं, मन दे दिया तो बाकी क्या रहा, यही शुद्ध अनुराग है, ये गोपियां का ये अनुराग है, गोपियां दिन रात उनकी चिंता किया करते हैं, अब अपना कुछ है ही नहीं, इसलिए ये रागात्मिका भक्ति है, एक रागात्मिका, एक रागानुगा और एक साधारण भक्ति। रागात्मिका किसको कहते हैं, गोपियों की जो भक्ति है उसके बारे में ये कह रहे हैं, बहुत ऊंची चीज, जिसको कृष्ण के प्रति, कृष्ण की कथाओं में सुनने में रति रुचि हो गई है, आसक्ति हो गई है, और कृष्ण के प्रति जिनका अनुराग है उनके समस्त काम, सारे काम अनुराग से होकर के हो रहे हैं, ये तो बड़ी ऊंची चीज है, साधारण लोगों के लिए नहीं है, ये महाभागवतों के लिए ये हो सकता है ना? इसमें कोई संशय की बात नहीं, कहते हैं अतः ऊर्धम न संशय, वो हमारा सबसे बड़ा प्रिय है और समस्त योगियों में श्रेष्ठ है, इसमें तनिक भी कोई संशय की बात नहीं है। यदि ऐसा नहीं है, अर्जुन ने कहा ये तो मेरे लिए बड़ा कठिन, ये किसको होगा, उत्तम महाभागवत को, ये तो रागात्मिक या रागानुगा भी समझ लीजिए, यदि किसी तरह से धर लें, पकड़ लें, तो इसमें सारे अनर्थ दूर हो चुके हैं, मन एकांतिक रूप में कृष्ण में लग चुका है, अब उसका अपना मन नहीं रह गया है, इसलिए एकांतिक और परम ये भागवतों के लिए कहा गया, अर्जुन महाभागवत है उनके लिए संभव है, दूसरों के लिए संभव पर नहीं ऐसा करना, इसलिए कहते हैं यदि ऐसा तुम नहीं कर सकते तो अभ्यास अभ्यास से अभी असमर्थ हो, अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि। यदि अपने मन को कृष्ण में न लगा सको, मनमना भी नहीं हुआ, उत्तम महाभागवत नहीं हुआ, अभी अनर्थ है, चित्त इधर उधर जा रहा है, तो क्या करो, मन को पूर्व से ले आओ, फिर से उसे पकड़ कर करके फिर कृष्ण का कीर्तन स्मरण बंधन इत्यादि करो। चित्त इधर जा रहा है, जाए फिर उसे ले आओ, फिर ले आओ, ये अभ्यास योग, अभ्यास योग के द्वारा उसे करो। ये उसे कुछ कम हुए, किंतु भक्ति जो कर रहे हैं एकांतिक भक्ति ही कर रहे हैं, किंतु अभी हो नहीं रहे, अभी उत्तम भागवत ये लोग नहीं है, अभ्यास योग यही पर श्रवणम कीर्तनम नहीं हो, मन नहीं लगता है तभी लगाओ, हरिनाम नहीं कर होता है तभी करो। अभ्यास योगे ना तो माम इच्छा, माम इच्छा तुम धनंजय, हमें प्राप्त करने की इच्छा से, वहां पर तब एक तरह से प्राप्त हो चुका है, मन लग चुका है, अनुराग उनमें कुछ हो चुका है, अनायासी में चित्त उधर ही दौड़ता है, और इसमें यदि ऐसा नहीं होता है तो करो अभ्यास योग के द्वारा, ये करो, क्या करो, पुनः पुनः श्रवणन के, मन नहीं लगता है तभी करो, हरी कथा सुनने की इच्छा नहीं है तभी सुनो, भगवान के धाम में जाने की इच्छा नहीं है तभी जाओ, ऐसे करते करते धीरे 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 अभ्यास योग के द्वारा ये फिर पहली स्थिति आ जाएगी उत्तम महाभागवत की। यदि इसमें भी अभ्यास के द्वारा भी तुम समर्थ नहीं हो, अभ्यास नहीं कर सकते, तो मत कर्म परमो भव, भगवान के लिए कर्म करो, क्या, भगवान के लिए बगीचे लगाओ, भगवान के लिए तुलसी लगाओ, भगवान के लिए शिव मंदिर बनाओ, भगवान के लिए ही सब कुछ करो, ऐसे कर्म करते करते तुम्हारा चित्त भी उसमें लग जाएगा पीछे, अभी चित्त तो तुम्हारा नहीं लगता है, इसलिए बाहरी जो तुम्हारे कार्य हैं उन कार्यों को भी भगवान के निमित्त करो। अभ्यास से अभी असमर्थ हो असी मत कर्म परमो भव, हमारे मत कर्म मेरे कर्म पर माने परायण हो, मेरे लिए ही खाओ, मेरे लिए ही सो, मेरे लिए ही चिंतन करो, मेरे लिए ही चलो, मेरे लिए व्यवसाय करो, मेरे लिए वाणिज्य करो, सब कुछ करो। यदि श्रवण कीर्तन स्मरण पूरा नहीं हो पा रहा है, मन नहीं लगता, क्या करेगा, कर्मों में अभ्यस्त है, इसलिए उन कर्मों को भी भगवान से थोड़ा सा तो करो। मत अर्थम अभी, मत अर्थम मेरे लिए करो, झाड़ू लगाओ मंदिर में, इसलिए भगवान की कृपा हो, जैसे अम्बरीश महाराज जी कर रहे हैं मंदिर में झाड़ू लगाना, प्रताप रुद्र क्या कर रहे हैं, उनकी रथ यात्रा निकल रही है सोने के झाड़ू से, और वो झाड़ू दे रहे हैं और वहां पर छिड़क रहे हैं सुगंधियां, ये भगवान के लिए कर्म हुआ, एक जगह बैठ करके उनका चित्त स्थिर नहीं रह सकता, वो नहीं कर सकते, लाखों काम है उनके लिए, इसलिए कुछ कुछ कर्म जो है वो भगवान के लिए करते हैं, इसलिए जितने कर्म भी हैं जो कुछ करते हैं खाते हैं, जत करोसी जदश नासी जत जुहोसी मदर्पण, ऐसा ही तो ऐसे ही तो मेरे लिख लिए उसे अच्छा है कुछ, हाँ उसे भी अच्छा है, जो कुछ करो संसार भी करते हो तो भगवान के लिए ही करो। मदर्थम अपि कर्माणि, ये कर्म है, भक्ति तो है नहीं, श्रवण कीर्तन नहीं है, ऐसा है उन कर्मों को भी भगवान के लिए करो। जैसे एकादशी लोग करते हैं, एकादशी से शुद्ध भक्ति है, किंतु कर्मी लोग भी करते हैं, ज्ञानी लोग भी करते हैं, तपस्वी भी करते हैं, संसारिक फल लाभ करने वाले भी करते हैं, उनको भी भगवान के लिए ही करो। एकादशी हो इसके लिए हमारा कृष्ण के चरण में भक्ति, इस तरह से समस्त कर्मों को करो। यदि उसमें भी आसक्त हो तब क्या करो, कर्म करो भाई, कर्म उसका फल दे दो भगवान को, इतना भी तो कर सको। अच्छा तुम करते हो कर्म, सब कर्म करो, व्यवसाय वाणिज्य इत्यादि जितने भी कर्म करते हो करो, उसको भगवान को अर्पित कर दो, अंत में उसका फल दे दो। ऐसा क्या होगा, चित्त उसे शुद्ध होगा, फिर साधु संग होगा, फिर साधु संग से पर एक ज्ञान आएगा, और ज्ञान से फिर आएगा साधुओं के संग से, फिर धीरे धीरे भक्ति होकर के चलेगा। ये भक्ति नहीं है, ले जाएगा। और किंतु यदि कोई प्रारंभ से ही भक्ति करे उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। कर्म कर रहे हैं हम कर्म करने के लिए बाध्य हैं, यदि भगवान के लिए सब कुछ नहीं कर सकते तो विचार करके आदमी देखता है ना कि हम सब भगवान के लिए करते हैं क्या, जो कुछ कर्म करते हैं। अरे रोटी जो खाना है और एक कपड़ा है तो ये जैसे तैसे तुम्हारा हो जाएगा, तो इतना बड़े रूप में करने की क्या जरूरत है, कर तो रहे हैं। इसलिए यदि करते हैं करने के लिए बाध्य हैं तो करो किसके लिए, कर करके उसका फल तुम नारायणम तत्त समर्पयि, उनको समर्पण करो। ये समझो जी, कर्म की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, और उससे श्रेष्ठ ज्ञान है, और ज्ञान से भी श्रेष्ठ ज्ञान योग है, और ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है मेरी भक्ति। इसको समझ करके सब समय हमारा चिंतन करो, ध्यान करो, भक्ति भक्ति बड़ी सरल सहज है। स्पष्ट ही तो बतलाए कर्म फल को, कर्म भगवान के लिए करो। हम टट्टी कैसे भगवान के लिए करें, हम टट्टी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं न अपने लिए, यह समझना महाभागवतों के लिए संभव है, तुम्हारे लिए अभी नहीं है, है कि नहीं। हम रसोई तो बना रहे हैं अपने लिए, आप सोचे कि ये भगवान के लिए बना रहे हैं। सचमुच में भक्ति हो भगवान के लिए रसोई बननी चाहिए, किंतु हम तो बनाते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, खाने के लिए, करते हैं कि नहीं। खाने से ही हो जाएगा, नहीं होगा। वो ऐसा जो भक्त है वो तो जैसे गोपियां किसके लिए रसोई बना रही, सोती हैं किस, श्रृंगार किस लिए कर रही। आप चश्मा पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, केशों को ऐसे लेकर के मेकअप करते हैं, ये कृष्ण के लिए करते हैं, इसलिए हमारे लिए तभी संभव नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को कर्मों, हमने जो कुछ किया भाई ये फल आप कृष्ण के लिए, कर्मों का फल कर अर्पण करना भी सहज नहीं है। एक आदमी, अच्छा हम लोग किस लिए करते हैं, हम लोग खाते हैं, टट्टी जाते हैं, टट्टी किस लिए जाते हैं, अपने लिए जाते हैं कि नहीं। यदि न जाए तो और टट्टी लगी हुई है तो क्या होगा, क्या होगा इसमें। भगवान का सुख के लिए हम किस लिए जा रहे हैं, वैष्णव लोग तो कर लेंगे, साधारण लोगों के लिए ये करना बड़ा भारी मुश्किल है। रोटी पका रहे हैं, हम देख रहे हैं ये अपने लिए पका रहे हैं। कृष्ण बिना रोटी का भी जी सकता है, यशोदा का कृष्ण बिना खाए नहीं रह सकता जी भी, किंतु हमारा कृष्ण जगत का सृष्टि करने वाला है ना, उसको भूख नहीं लगती अभी, इसलिए हम लोग अब ऐसे नहीं कर सकते हैं। जब उस इसमें स्थित हो जाएंगे तब हम कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अभी हमारा रोटी बनाना किस लिए है, अपने लिए। किंतु अंततः मध्यम अधिकार में हो जाएंगे तभी ये हो जाएगा कि आप रोटी बनाएंगे कृष्ण के लिए, क्योंकि हम सेवा उनकी नहीं कर सकते बिना खाए। इसलिए इसलिए जरूरी हमारा रोटी बनाना भी कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए ही रोटी बना रहे हैं, किंतु सबके लिए अभी यह धारणा करना मुश्किल है। इसलिए रोटी बना करके और भगवान को अर्पण कर दिया, रोटी तो बनाई अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, किंतु उसको लेकर अच्छा अंत तो अर्पण तो कर दो। इसलिए कर्मों का अर्पण करना ये बहुत निम्न है, तो भी संसार की दृष्टि से, संसारिक लोगों की दृष्टि से अभी उत्तम है। ये कर्म क्रम मार्ग है। यदि तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। क्या ज्ञान का अनुशीलन? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, भगवान ही सबके प्रभु हैं, यही आत्मज्ञान है। यदि वो भी नहीं कर सकते, सबसे अच्छा है सरल सहज तरीका है, मैं भगवान का सेवक हूं, जो कुछ कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं, ये भी भगवान की ही सेवा है। किंतु कनिष्ठ अधिकारी के लिए ये करना बड़ा भारी मुश्किल है। तो भी कहते हैं अच्छा, जन नहीं है तो भी अपने कर्मों का अर्पण तो कर ही सकते हो। यदि ऐसा करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो भक्त हैं जो कि सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, चित्त भी सब समय भगवान में लगा रहता है, जो कुछ करते हैं भगवान के लिए, तो उनका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें उनको शोक मोह भय इत्यादि हो। इसलिए कहते हैं अद्वेष्ट, हमारे जो भक्त होते हैं अद्वेष्ट। यदि कोई द्वेष भी करता है तो उसके प्रति वो द्वेष नहीं करते, तब सब जो वो अब जा रहे हैं कहां, जो भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे भक्तों का ये लक्षण दे रहे हैं। ये जो कर्मों को कर करके अर्पण करते हैं उनमें ये नहीं आएगा, उनमें नहीं आएगा। अभ्यास के द्वारा जो कर रहे हैं उनमें भी कुछ कुछ हो सकता है, किंतु जो जिनका चित्त भगवान में लग गया है उनके ये लक्षण बढ़ रहा है। ये किनके लक्षण है? भक्तों के, ज्ञानियों के, ज्ञानी योगी कर्मी और कर्मी योगियों का ये लक्षण नहीं, जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं ऐसे भक्तों का लक्षण है अद्वेष्ट। द्वेष करने पर भी वो किसी से द्वेष नहीं करते। द्वेष करने पर कोई द्वेष करता है ये कैसा है? अभी अर्पण करने वाले हैं कर्मों का, अभी उतना तत्व ज्ञान नहीं, भगवान के प्रति प्रीति नहीं आई है न? इसलिए उन भक्तों का लक्षण सर्वभूतानां मैत्रः, प्राणी मात्र के प्रति उनकी मित्र मैत्री भाव होगा। करुणम, करुणा सबके प्रति रहेगी। निर्ममो, निर्मम, निर्मम माने क्या है? ममो ये भाव संसार के प्रति न रह करके के निश्चित रूप में कृष्ण के प्रति रहे, कृष्ण के प्रति मम भाव रहे, कृष्ण मेरे हैं, और संसार के प्रति निर्गता ममता, जिसमें संसार में शरीर में ये ममता नहीं है, ये मेरा। निरहंकार जागतिक अहंकारों से रहित होता है, मैं विद्वान हूं, धनी हूं, अमीर हूं, कोई गुण वाला हूं, ये सब नहीं रहेगा। सुख दुख सम, सुख और दुख में वो सम रहेंगे, क्यों? उनके लिए सुख और दुख दोनों ही सम है। अधिक धन का हो जाना ये सुख की बात, निर्दोष हो जाना दुख की बात। जो भक्ति परायण है उनके लिए ये अधिक धन या निर्धन कोई समस्या नहीं है। जिस रूप में वो रहते हैं भगवान ने अपने कर्मों के फल से दिया है, उसी में संतुष्ट रह करके भगवान का भजन करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज, महाराज चक्रवर्ती राजा रह करके, और दुर्वासा वाले अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा रह करके चक्रवर्ती किस प्रकार से भजन कर रहे हैं, और सुदामा पिप्र हैं हमारे नवद्वीप में, श्रीधर जी हैं, हरिदास ठाकुर जी हैं, उसी स्थिति में संतुष्ट होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, उनको सुख दुख से कोई भी संबंधित नहीं है। क्षमी, सबको क्षमा करने वाले, कोई जो कुछ भी करे उसके प्रति क्षमा करते हैं, बस एक स्थिति में क्षमा नहीं करते, कौन? यदि भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति यदि कोई अवज्ञा करता है उसको क्षमा नहीं। किंतु देखते हैं कि यदि सुधर सकता है तो उसके लिए चेष्टा करेंगे, और देखते हैं कि निरंतर जान बूझ करके अवज्ञा और निंदा कर रहा है तो फिर उसको दंड देंगे, या तो उसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, और यदि उनको कुछ जैसे हनुमान को शक्ति है लंका को जला दिया, और नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले आओ संतुष्ट। सभी कामों में संतुष्ट रहते हैं, लाभ हो हानि हो, जय पराजय हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, किसी भी स्थिति में संतुष्ट रह करके भगवान का भजन करते हैं, वो सबका सामंजस्य कर सकते हैं, हम लोग अभी नहीं कर सकते। सततम योगी सब समय भगवान से युग युक्त रहता है। यतात्मा यतात्मा आत्मसंयमी, संयम रखने वाले हैं, दृढ़ निश्चय निश्चित उनका माने दृढ़ता है उनमें, प्राण जाएगा किंतु तभी भक्ति नहीं छोड़ सकते। मैं अर्पितम मनोबुद्धि, इन्होंने अपने को मन बुद्धि इत्यादि सब कुछ आत्मा तक को भी अर्पित कर दिया है। मद भक्त हमारा जो भक्त है सच में प्रिय, ऐसा भक्त हमको जस्मान न उद्विजते लोको, किसी को उद्वेग नहीं देता और किसी से उद्वेग प्राप्त नहीं होता। माने क्या, उदाहरण के द्वारा समझिए, दुर्योधन ने पांडवों को युधिष्ठिर महाराज को उद्वेग देने में कोई कसर नहीं रखी, युधिष्ठिर महाराज ने बदले में उसको उद्वेग नहीं दिया, एक तरफा कार्रवाई की, इसलिए युधिष्ठिर महाराज उसके लिए उद्वेग नहीं दे रहे, और वो जो उद्वेग का कारण बन रहा है उसके लिए अपने को उद्वेग नहीं होते, निश्चिंत है उसके लिए, हमारे कर्मों का फल या प्रभु की जो इच्छा, इसलिए उद्वेग नहीं प्राप्त होते हैं, वो तो उद्वेग दे रहा है किंतु ये उद्वेग नहीं होते, और अपने तरफ से किसी को उद्वेग नहीं देते, अपने खाने के लिए पीने के लिए और सब चीजों के लिए दूसरों को उद्वेग मत दो, और उनके द्वारा जैसे कि त्रिदंडी उपाख्यान भागवत में है, कोई ब्राह्मण था अच्छा परिवार का, अपनी स्त्री के लिए बेटे के लिए बच्चों के लिए समाज के लिए एक पैसा खर्च नहीं करता, यहां तक कि सरकारी लगान जो है वो भी नहीं देता, किसी समाज के लिए किसी भी एक पैसा नहीं खर्च करता, बहुत धनी हो गया किंतु निर्धन धाती रहता, बच्चे उनके विरोधी हो गए, समाज विरोधी हो गया, घर में आग लगा दी, आग लग गई, घर जल गया, सब वैभव जल गया, घर वालों ने उनको बाहर कर दिया, घर से समाज ने बाहर कर दिया, इनको कुछ चेत हुआ, कुछ पूर्व जन्म का की सुकृति थी, एक साधु से संग हो गया, उन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेकर के गुरु जी ने कहा जी अपने गांव में जाओ, जिन शत्रुओं को मानते हो उन्हीं के पास भिक्षा मांग करके जाओ, वो उसे गाली देते, उस पर थूक फेंकते, उसके रोटी के ऊपर में टट्टी कर देते, बहुत उसके दंड को छीन लेते, वो एकदम शांत भाव बना रहा, इतना उद्वेग दे रहे हैं तभी उद्वेग उसको नहीं मान करके सोचता है आज प्रभु ने हमको सहने की कुछ शक्ति के लिए सिखाने के लिए ऐसा किया, इस अवस्था में भी जो उद्वेग नहीं रहेगा वो भगवान का भजन करेगा, नहीं तो थोड़ी सी उद्वेग न कर चित्त नष्ट हो जाए, एक पैसे की हानि हो गई बस मन खराब, इसलिए कहते हैं कि दूसरों को उद्वेग नहीं देता और दूसरे उद्वेग देते हैं तभी वो उद्विग्न नहीं होता है। हर्ष अमर्ष भयो उद्वेगई मुक्त, जागतिक आनंद से अमर्ष माने उसके ठीक विपरीत, जागतिक दोष जो करते हैं भय और उद्वेग से सदा मुक्त बना रहता है और भगवान का भजन कर रहता है, जो ऐसा नहीं होगा वो भगवान का निरंतर भजन नहीं कर सकता, थोड़ा सा कुछ हो गया, उद्विग्न हो गया चित्त, वो अब उसका मन ही नहीं लग रहा भगवान के भजन में, क्या करेगा? एक राष्ट्रपति हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं, खूब भजन कर रहे थे, और जहां यदि किसी प्रकार से उनका वो पद चला गया, हार गए चुनाव में, मन लगेगा? उसको स्थिर करना सहज है, घर में ही कुछ ऐसा उद्विग्न की बातें हो गई, मन ही नहीं लगेगा, 10 दिन 20 दिन तक नहीं लगेगा, मन निरस हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से मुक्त हैं, ऐसे जो भक्त हमारे जो तो भी मन लगाए हुए रहते हैं, हमारी श्रवण स्मरण कीर्तन करते हैं, वो भक्त अनपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, वो आएगा उसके लिए हमारी अपेक्षा है, वो आएगा तो मैं स्नान करा देगा, हमारा पैर दबा देगा, हमारी रसोई बना देगा, हमारा यह काम कर देगा, भाई किसी की अपेक्षा निरपेक्ष, शुचि दक्ष, सब समय पवित्र, सब कामों में दक्ष, दक्ष माने सभी कामों को कर्मों को भगवान के भक्ति में लगा देना, ये दक्षता। संसार से उदासीन गतव्य था, जिसको किसी प्रकार का दुख नहीं है, सर्वारंभ पर त्यागी, सर्वारंभ माने बागाडंबर से अधिक दूर रहता है, सब समय भगवत भक्ति के ही कामों में लगा रहता है, और किसी काम में ये करो वो करो सब समय उसी में व्यस्त रहो ऐसा नहीं, चित्त भगवान में लगा रहे, ऐसा जो भक्त है वो मद भक्त समय प्रिय, वह हमारा प्रिय है। जो न हृष्यति, संसारी किसी लाभ को पाकर के जो कि प्रसन्न नहीं होता, और न किसी से द्वेष करता है, न कभी शोक करता है, न किसी चीज की आकांक्षा करता है, बस एक चीज की आकांक्षा करता है, किस चीज की? राधा कृष्ण की प्रीति, बस एक चीज की आकांक्षा, संसारी किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं, उसी लिए लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए द्वेष होता है, उसमें द्वेष भी नहीं। ऐसे शुभाशुभ पर त्यागी, जगत के लिए जो शुभ और अशुभ है दोनों को छोड़ देने वाला, बस शुभ एक ही है भगवान का भक्त, इसको नहीं छोड़ेगा, ऐसे भक्त मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो हमारे इस उपदेश रूपी अमृत का पान करने वाले हैं और इसका यथाजथ पालन करने वाले हैं, वो क्रमशः कर्मों के अर्पण से इसको छोड़कर आगे बढ़े, मेरे लिए कर्म करें, फिर उसे आगे बढ़ करके अभ्यास करेंगे, और अंत में उसे रागमयी भक्ति, यही गीता का सार है। चित्त अपने आप बरबस कृष्ण के चरणों में लगे, विशेष करके चार प्रकार की जो भक्ति है, दास सख्त बात्सल्य और मधुर, और उनमें भी जो गोपियां जिस भाव से कृष्ण की सेवा करती हैं, ऐसे ही हमारा चित्त उनमें सब समय रमण करे, यही गीता का सार है। एक कीर्तन कीजिए।